नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप सुन रहे हैं रेडियो आईबीसी। आज के दौर में यूथ पीढ़ी के लिए अगर ये कहें कि सोशल मीडिया बिना सब सुन, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन इन पर यूजर्स की सेफ्टी और प्राइवेसी को लेकर इन दिनों जंग छिड़ी है और इसे लेकर देश और दुनिया में क्या हालात हैं, इसी पर बात कर रहे हैं आज का न्यूज मेकर में। तो ध्यान से सुने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आपको दे दें, मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप केंद्र सरकार की नए आईटी नियमों के खिलाफ कोर्ट तक पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने 3 महीने पहले एक गाइडलाइन जारी कर व्हाट्सएप और उन जैसी तमाम कंपनीज को अपने मैसेजिंग ऐप पर भेजे गए मैसेज के ओरिजिन की जानकारी अपने पास सुरक्षित रखने और वक्त पड़ने पर इसे जांच के लिए साझा करने के निर्देश दिए। सरकार के इसी नियम के खिलाफ कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर लिया है। कंपनी के मुताबिक सरकार के इस फैसले से उनके यूजर्स की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। व्हाट्सएप की ओर से कहा गया कि मैसेजिंग ऐप से चैट को इस तरह से ट्रेस करना लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा, क्योंकि इसके लिए हमें व्हाट्सएप पर भेजे गए सारे मैसेज पर नजर रखनी पड़ेगी और ऐसा करने पर लोगों की प्राइवेसी के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन का कोई औचित्य नहीं बचेगा। कंपनी ने यह भी कहा कि भले ही हमने कोर्ट का रुख किया है, लेकिन इस मुद्दे पर भारत सरकार से बातचीत कर समाधान लेने की कोशिश की जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए साल 2021 की शुरुआत में 25 फरवरी को एक गाइडलाइन जारी कर उसे लागू करने के लिए कंपनीज को 3 महीने का वक्त दिया था। ये डेडलाइन 25 मई मंगलवार को खत्म हो गई। व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अब तक ये बात नहीं बताई है कि केंद्र की गाइडलाइन को लागू किया गया या नहीं किया गया, और ऐसे में सरकार अब स्वतंत्र है कि वो इन पर कभी भी कोई भी एक्शन ले सकती है। इस बीच व्हाट्सएप पर मालिकाना हक रखने वाली कंपनी फेसबुक ने मंगलवार को ये साफ तौर पर कहा कि वो भारत के आईटी नियमों का पूरी तरह पालन करेगी। कुछ मुद्दों पर विरोधाभास है जिस पर सरकार से बातचीत जारी रखेंगे। आईटी के नियमों के मुताबिक ऑपरेशनल प्रोसेस लागू करने और एफिशिएंसी बढ़ाने पर काम हो रहा है। कंपनी इस बात का ध्यान रखेगी कि लोग आजादी से सुरक्षित तरीके से अपनी बात हमारे प्लेटफॉर्म्स पर रख सकें, कह सकें। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 25 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने सोशल मीडिया, डिजिटल न्यूज मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 लागू किया। चलिए अब आपको 25 फरवरी को जारी की गई गाइडलाइंस का मौजूदा दौर में क्या हाल है और उसके तहत किन नियमों का इन्हें पालन करना था, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया को जो नियम लागू करने थे उसके मुताबिक अगर सोशल मीडिया पर किसी की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की जाती है तो शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। कोई भी अदालत या सरकारी संस्था किसी आपत्तिजनक, शरारती ट्वीट या मैसेज के फर्स्ट ओरिजिनेटर की जानकारी मांगती है तो कंपनी को देना होगा। कंपनियों को 3 महीने में चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करने होंगे और ये सभी भारतीय नागरिक होना चाहिए। जो यूजर अपना वेरिफिकेशन चाहता हो, सोशल मीडिया कंपनियों को उसे इसकी व्यवस्था देनी होगी। जैसे कि ट्विटर वेरिफाइड अकाउंट होने पर एक ब्लू टिक देता है। अब आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइन पर क्या असर हुआ है। इस नियम को लागू करने के लिए तमाम कंपनियों को 3 महीने का वक्त दिया था। ज्यादातर सोशल मीडिया कंपनियों ने नए नियमों को लागू करने के फैसले के लिए और वक्त मांगा है। हालांकि भारतीय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स ने क्रू के संबंध में जो नए नियम थे उनको पूरी तरह लागू किया है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कहते हैं कि फिलहाल कंपनियों में कुछ होता नजर नहीं आया। सोशल मीडिया कंपनियों के साथ 99% भारतीय कंपनियों पर ये रूल लागू होते हैं जिनके पास किसी भी तरह से थर्ड पार्टी का डेटा एक्सेस करने का अधिकार है, लेकिन कोई भी कंपनी अभी सरकार की गाइडलाइन को लेकर गंभीर नजर नहीं आई है। कुछ और एक्सपर्ट का मानना है कि जो कंपनियां भारतीय नियमों का पालन नहीं कर रही, नए नियमों की धारा 7 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इंटरमीडियरी नियमों को ना मानने वाली कंपनियों की लिस्ट बनाकर जनता को सूचित करने के लिए उन कंपनियों के खिलाफ सरकार को अलर्ट नोटिस जारी कर देना चाहिए। अब आपको बताते हैं डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स जिनकी इन दिनों बाढ़ है उनके लिए क्या नियम बनाए गए हैं और उनकी क्या स्थिति है। डिजिटल न्यूज मीडिया के पब्लिशर्स को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई के नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट और केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड का पालन करना होगा। सरकार ने डिजिटल न्यूज मीडिया पब्लिशर से प्रेस काउंसिल की तरह सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनाने को कहा है। अब आपको बताते हैं कि 3 महीने में क्या हुआ। एक्सपर्ट कहते हैं कि डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स को लेकर ऐसी कोई सर्वमान्य सेल्फ रेगुलेशन बॉडी अभी तक बनी ही नहीं है, यानी इस दिशा में भी कुछ संजीदा काम नहीं किया गया। 3 महीने पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर क्या नियम बने, ये भी जान लीजिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेंट को 5 कैटेगरी में बांटने के लिए कहा गया। उसे हर कैटेगरी के कंटेंट पर ये बात पहले बतानी पड़ती कि वो किस उम्र आयु वर्ग के लोगों के लिए है। ओटीटी प्लेटफॉर्म से अगर कोई शिकायत होती है तो 3 स्तर पर सुनवाई होगी। पहले ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर, फिर सेल्फ रेगुलेशन बॉडी और फिर सरकार का ओवरसॉट मैकेनिज्म जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन बनेगा। 3 महीने बीत जाने के बाद कई सारी कंपनियों ने इस पर सकारात्मक कदम उठाए हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेज़न प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार और ज्यादातर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने इस नियम को लागू कर रखा है, जिसमें दर्शकों को ये बात बताई जा रही है कि वो किस तरह का कंटेंट देखने वाले हैं। लेकिन शिकायत की स्थिति में ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर की नियुक्ति और सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी वाली बात अब तक कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आई है। हो सकता है कि इसकी वजह लॉकडाउन और दफ्तरों का बंद होना हो और इसीलिए कंपनियों को इस दिशा में थोड़ा सा वक्त और दिया जा सकता है। वैसे इन तमाम माध्यमों को लेकर भारत सरकार ने 3 महीने पहले जो कवायद शुरू की है, इसमें कंपनियों को कुछ और वक्त दिया जा सकता है। लेकिन दुनिया में कुछ देश हैं जिन्होंने इस तरह की व्यवस्थाएं पहले से कर रखी हैं। मसलन सिंगापुर में इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी IMDA नाम की एक संस्था है जो सर्विस प्रोवाइडर्स को जरूरी लाइसेंस प्रदान करती है। वहाँ किसी भी OTT प्लेटफॉर्म को अपने कंटेंट की रेटिंग्स देना जरूरी है। मसलन इसे किस आयु वर्ग के लोग देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये संस्था प्रतिबंधित कंटेंट की एक विस्तृत सूची जारी करती है। अगर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो IMDA कंटेंट को हटा सकता है और प्लेटफॉर्म पर जुर्माने की कार्रवाई भी कर सकता है। वहीं अमेरिका में 2019 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट पर नजर रखने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का प्रस्ताव आया था, लेकिन US फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने कहा कि ये प्रस्तावित रेगुलेशन अनावश्यक है, भारी भरकम है। कमीशन ने ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल नियमों को पेश करने की मांग करते हुए इसे ठुकरा दिया था। और फिलहाल अमेरिका में इस कोड को लेकर अभी डिबेट यानी बहस की स्थिति है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में ट्रेडिशनल मीडिया के लिए ऑस्ट्रेलियाई कम्युनिकेशन और मीडिया अथॉरिटी है। इसमें डिजिटल मीडिया के लिए ई सेफ्टी कमिश्नर की नियुक्ति होती है। ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज एक्ट 1992 के तहत सारे कंटेंट रेगुलेट किए जाते हैं। इस एक्ट में गाइडलाइन, शिकायत और प्रतिबंधित कंटेंट से जुड़ी जानकारियां विस्तार से होती हैं। इसी तरह यूरोपीय देशों में फिलहाल डिजिटल मीडिया को लेकर कोई रेगुलेशन नहीं है, लेकिन अवैध ऑनलाइन कंटेंट से निपटने के लिए कुछ सिफारिशें वहां भी की गईं। यूरोपियन यूनियन ने इंटरनेट पर अवैध और हानिकारक कंटेंट नाम से एक पेपर पेश किया है, जिसमें ऐसे कंटेंट की सूची तैयार की गई जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो। इसके अलावा नाबालिगों को प्रभावित करने वाले कंटेंट को वहां सूचीबद्ध करने का काम शुरू हो चुका है और ऐसे कंटेंट की जांच की सिफारिशें भी की जा रही हैं। इस मामले में सऊदी अरब सबसे सख्त नजर आता है। सऊदी अरब में एक एंटी साइबर लॉ है जिसका उल्लंघन करने पर किसी भी शो को रोकने या उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होता है। सऊदी अरब में 1 जनवरी 2019 को नेटफ्लिक्स को एक कॉमेडी शो को केवल इसीलिए बंद करने के लिए विवश किया था क्योंकि उसमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की आलोचना थी। सऊदी अरब के अधिकारी कहते हैं कि शो ने उनके एंटी साइबर लॉ का उल्लंघन किया है। इस नियम के दायरे में सभी डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट किया जा रहा है। चीन भी इस मामले में काफी सख्त रहा है। चीन में कई सारे प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स, ये सभी प्रतिबंधित हैं। उनकी जगह टेंसेंट और यूको जैसे लोकल प्लेटफॉर्म्स का दबदबा है। वैसे चीन की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इसमें ज्यादा काम करती नजर आती है। चीन ने अपने ही प्लेटफॉर्म्स को अपने देश के भीतर प्रमोट करने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स को प्रतिबंधित कर रखा है। चीन में नेशनल रेडियो टेलीविजन प्रशासन विदेशी कंटेंट को पूरी तरह रेगुलेट करता है। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि चीन में गूगल, फेसबुक और ट्विटर तक पर बैन लगा है और इसकी जगह चीनी लोकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। कुल मिलाकर भारत सरकार द्वारा बनी नई गाइडलाइंस के तहत सोशल मीडिया कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए कंपनीज के पास में 3 महीने का वक्त था, जो अब पूरा हो चुका है। अब केंद्र सरकार के पास कंपनियों की मांग के मुताबिक उन्हें कुछ और वक्त देने का या फिर उन पर कार्रवाई करने का विकल्प खुला हुआ है। देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर किस तरह का कदम उठाती है। आज का न्यूज मेकर आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। नमस्कार।